آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں آسیہ میمونہ۔ حکومت نے ملک میں سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کو مستحکم کرنے کی خاطر 1,27,000 کروڑ روپے سے زیادہ کے اخراجات کے ساتھ سیمیکون 2.0 کو منظوری دے دی ہے۔ اس نے گھریلو پیداوار بڑھانے کے لیے موبائل فون مینوفیکچرنگ اسکیم کو بھی منظوری دی ہے۔ مرکز نے سڑک کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانے اور ٹریفک کی بھیڑ بھاڑ کو کم کرنے کے لیے اتر پردیش کے وارانسی میں سطح زمین سے اوپر 2 کوریڈور پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ بھارت برطانیہ جامع اقتصادی اور تجارتی معاہدہ اور اس سے منسلک سماجی تحفظ کا معاہدہ مکمل طور پر نافذ ہو گیا ہے۔ پہلے دن 14 کروڑ ڈالر مالیت کا بھارتی سامان برطانیہ برآمد کیا گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک دوسرے پر پھر حملوں کے تناظر میں امریکہ کی جانب سے ایران پر بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کیے جانے کے بعد مغربی ایشیا میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جکارتا میں انڈر 19 اور انڈر 23 ایشیائی چیمپئن شپس میں 3 بھارتی خواتین مکے بازوں نے سونے کے جبکہ دیگر 10 نے چاندی کے تمغے جیتے ہیں۔ اور فیفا عالمی کپ فٹ بال کے فائنل میں اپنی جگہ پکی کرنے کے لیے آج رات امریکہ کے اٹلانٹا میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی کابینہ نے آج اتر پردیش میں قومی شاہراہ 19 اور وارانسی رنگ روڈ کے درمیان 46 کلومیٹر طویل 6 لین والے گرین فیلڈ سطح زمین سے اوپر کوریڈور کو منظوری دی ہے، جس سے شہری موبیلٹی میں بہتری آئے گی۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ پروجیکٹ کی کل سرمایہ لاگت 14,400 کروڑ روپے سے زیادہ ہوگی اور یہ قومی شاہراہ 19 اور وارانسی رنگ روڈ کے درمیان بلا رکاوٹ کنیکٹیویٹی فراہم کرے گا، جس سے شہر کے سڑک نیٹ ورک پر نمایاں طور پر بھیڑ بھاڑ کم ہوگی اور شہری موبیلٹی بہتر ہوگی۔ امکان ہے کہ یہ پروجیکٹ جس حصے کا احاطہ کرے گا اس میں سفر کا اوسط وقت 60 منٹ سے کم ہو کر 20 منٹ ہو جائے گا۔ مرکزی کابینہ نے اتر پردیش میں ورونا دریا کے کنارے تقریباً 43 کلومیٹر طویل 6 سے 4 لین والے سطح زمین سے اوپر کوریڈور کی تعمیر کی بھی منظوری دی ہے، جس پر کل سرمایہ لاگت تقریباً 11,000 کروڑ روپے ہوگی۔ اسے وارانسی رنگ روڈ، وارانسی ہوائی اڈے، کاشی ریلوے اسٹیشن، وارانسی جنکشن اور دین دیال اپادھیائے جنکشن تک رسائی میں نمایاں بہتری بھی آئے گی۔ مرکزی کابینہ نے بھارت کے سیمی کنڈکٹر ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ ایکو نظام کی تشکیل کے لیے 1,27,500 کروڑ روپے کے بجٹ اخراجات کے ساتھ سیمیکون 2.0 پروگرام کی بھی منظوری دی ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ سیمیکون 1.0 پروگرام میں توجہ صنعت کے آغاز اور اسے قائم کرنے پر تھی اور سیمیکون 2.0 کے تحت سبھی اہم ضروری چپس بھارت میں ہی ڈیزائن کی جائیں گی اور اس سیمی کنڈکٹر پروگرام کے اختتام تک ملک چپ ڈیزائن کرنے کے معاملے میں خود کفیل بن جائے گا۔
Semicon 2.0 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
Us industry ko aur aage badhane ke
جناب ویشنو نے مزید کہا کہ بھارت نے امریکہ، جاپان، یورپی یونین، نیدرلینڈ، سنگاپور اور جرمنی کے ساتھ پہلے ہی شراکت داریاں قائم کی ہیں۔ انہوں نے مطلع کیا کہ سیمیکون 2.0 کے تحت 4,00,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا امکان ہے۔ مرکزی کابینہ نے 62,500 کروڑ روپے کے بجٹ اخراجات کے ساتھ موبائل فون مینوفیکچرنگ اسکیم کی بھی منظوری دی ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ آئندہ 5 برس کے لیے یہ اسکیم نافذ کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم سے اس کی مدت کے دوران مجموعی طور پر اندازاً 39,00,000 کروڑ روپے کے موبائل فون تیار کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ مجموعی برآمدات کے 7,50,000 کروڑ روپے سے بڑھ کر 15,00,000 کروڑ روپے تک پہنچ جانے کی امید ہے۔
मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
मरकजी काबीना ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 की खातिर कौमी सरमायाकारी पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि इस पॉलिसी का मकसद मुल्क में गैस पर मबनी यूरिया तैयार करने वाले यूनिटों के कयाम के लिए यूरिया के शोबे में नई सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना है ताकि खुद कफालत के हदफ को हासिल किया जा सके।
यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा CETA नाफिज हो गया है। इसके साथ ही समाजी सिक्योरिटी से मुतालिक मुआहिदा, जिसे डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी कहा जाता है, भी नाफिजुल अमल हो गया है। इससे बरतानिया में काम करने वाले भारतीय पेशेवर अफराद की आमदोरफ्त और मुसाबकती सलाहियत को मजीद तकवीत मिलेगी। इस तारीखी मुआहिदे के तहत बरतानिया के बाजार में भारतीय बरामदात के 99% हिस्से को 0 महसूल के साथ रसाई हासिल होगी। इसमें टेक्सटाइल, चमड़ा, इंजीनियरिंग, खुराक की डिब्बाबंदी, दवासाजी और MSME जैसे शोबे शामिल हैं। इस मुआहिदे पर अमल दरामद भारत को आलमी सतह पर एक मजबूत, मुसाबकती और पायदार मईशत बनाने की समत में एक अहम कदम है। ये मुआहिदा भारत और बरतानिया के दरमियान इक्तिसादी सिफारतकारी के एक नए दौर का आगाज भी है। मुआहिदे के निफाज के पहले ही दिन भारत से बरतानिया को 14 करोड़ अमरीकी डॉलर मालियत की अशिया बरामद की गई। तिजारत के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये मुआहिदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के ऐन मुताबिक है। उन्होंने कहा कि ये एक निहायत अहम और बड़े तिजारती मुआहिदों में से एक है जो दोनों मुल्कों को तिजारत और सरमायाकारी के नए मौके फराहम करेगा। बरतानिया की हाई कमिश्नर लिंडी कैमरॉन ने कहा कि ये मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए निहायत सूदमंद साबित होगा। मलबूसात की बरामदात को फरोग देने से मुतालिक कौंसिल AEPC के चेयरमैन डॉक्टर ए सक्थीवल ने कहा कि इस मुआहिदे के नतीजे में 1.5 साल के अंदर बरामदात दोगुनी होने की उम्मीद है। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने कहा कि जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा CETA और समाजी सिक्योरिटी से मुतालिक मुआहिदा भारत और बरतानिया के दहरीना ताल्लुकात में एक अहम संग मील है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा CETA से भारत के किसानों, कारोबारी अफराद और MSMEs को काफी फायदा होगा, जबकि मुख्तलिफ शोबों को बरतानिया के बाजार तक बेहतर रसाई हासिल होगी। इससे टेक्नोलॉजी, पेशेवराना खिदमात और इख्तरा के शोबों में भारतीय बाहमी तआवुन बढ़ेगा और हुनरमंद भारतीय अफराद की आमदोरफ्त आसान होगी। उन्होंने मजीद कहा कि डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के तहत बरतानिया में आर्जी तौर पर काम करने वाले भारतीय पेशेवर अफराद को बड़ा फायदा पहुंचेगा और भारतीय कंपनियों की मुसाबकती सलाहियत में इजाफा होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों पर हमले के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान एक दूसरे पर फिर हमलों के तनाजुर में अमरीका की जानिब से ईरान पर बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। अमरीका की फौजी सेंट्रल कमान ने कहा है कि एक बार फिर किए गए हमलों का मकसद आबनाए हुरमुज में कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कम करना है, जो तवानाई की आलमी सप्लाई का एक अहम रास्ता है। ईरानी अहलकारों उन्होंने कहा कि अमरीकी हमलों में फौजी बैरिक्स को निशाना बनाया गया जिसमें कम अज कम 7 फौजी एहलकार हलाक हो गए। ईरान की सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि अमरीकी हमलों में जनूबी बंदरगाही शहर बूशहर को भी निशाना बनाया गया जहां मुल्क की सिविल न्यूक्लियाई तनसीबात मौजूद हैं। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान फातिमे मुहाजिरानी ने कहा कि एक दूसरे पर जारी हमलों के दौरान हालिया दिनों में 30 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। इस दौरान ईरान के सिपाह पासदारान इनकलाब इस्लामी ने दावा किया है कि उसने बहरीन और उर्दून में अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमले किए हैं जिसमें कमान सेंटर, तैयारों के शेल्टर और दीगर अहम मकामात को निशाना बनाया गया है। उसने कहा है कि ये हमले बुहरे हिंद में अमरीका की जानिब से बहरी अफवाज तैनात करने और आबनाए हुरमुस पर कंट्रोल के बहाने बहरी रास्तों की नाकाबंदी के जवाब में किए गए हैं। उसने इस नाकाबंदी पर मगरबी एशिया से तवानाई की सभी बरामदात को रोक देने की भी धमकी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे के रोज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वजीर आजम हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के दरमियान भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वो जिंद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। ज़राअत और किसानों की फलाह बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सपोर्ट CSR पर जोर दिया ताकि स्टार्टअप्स महारत की तरक्की और एग्रीटेक के जरिए ज़राअत को मजबूत बनाया जा सके। वजीर मौसूफ ने नई दिल्ली में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव 2026 के लिए ICAR टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर पर जोर दिया कि वो ट्रस्टीशिप के भारतीय अखलाक को अपनाएं और अपनी कमाई का एक हिस्सा किसानों, जरिए तहकीक और देही बिरादरियों के फलाह बहबूद के लिए वक्फ करें।
निश्चित तौर पर जो समझौते हुए हैं देश में कृषि के लिए भी और बाकी सेक्टर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये समझौते न केवल हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे जिसका लाभ खेती को भी मिलेगा बल्कि इन समझौतों से भारत में हमारे उद्योग, व्यापार जगत उनको एक नई ताकत मिलेगी।
चुनाव कमीशन ने आज पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना और दिल्ली में वोटर फहरिस्तों की खसूसी जामे नजरसानी SIR मुहिम की हतमी तारीख में 11 दिन की तौसी कर दी है। दिल्ली में इब्तदाई वोटर फहरिस्त अब 5 अगस्त के बजाय 17 अगस्त को शाये की जाएगी। इस तरह घर घर जाकर वोटरों की तस्दीक का अमल जो 28 जुलाई तक जारी रहना था अब 8 अगस्त तक जारी रहेगा। हतमी वोटर फहरिस्त 19 अक्टूबर को शाये की जाएगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज स्टार्टअप, तहकीक और इख्तरा के लिए बेल्जियम के ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर एकाटेरिना जहरीवा से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने तहकीक के लिए साफ सुथरी और माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजीज के लिए उभरते हुए मौके पर तबादला ख्याल किया। 19 साल और 23 साल तक की उम्र की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप्स में आज जकार्ता में 3 भारतीय खवातीन मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जीते हैं, वहीं दीगर 10 ने चांदी के तमगे जीते। 19 साल तक की उम्र के जुमरे में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता, वहीं प्राची ने 57 किलोग्राम जुमरे में सोने का तमगा जीता है। फीफा आलमी कप फुटबॉल के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में आज रात अमेरिका के एटलांटा में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे होगा। इससे पहले कल रात टेक्सास में मुकाबले के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर फाइनल में जगह बना ली थी। बरतानिया की हुकूमत ने आज 16 और 17 साल के 9 उम्र जवानों के लिए आधी रात के बाद सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद करने के मंसूबे का ऐलान किया है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने मुल्क में सेमीकंडक्टर इको निज़ाम को मुस्तहकम करने की खातिर 1,27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अखराजात के साथ सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दे दी है। उसने घरेलू पैदावार बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी मंजूरी दी है। मरकज ने सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और ट्रैफिक की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सतह जमीन से ऊपर 2 कॉरिडोर प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। भारत बरतानिया जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहिदा और इससे मुंसलिक समाजी तहफ़ का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर नाफिज हो गया है। पहले दिन 14 करोड़ डॉलर मालियत का भारतीय सामान बरतानिया बरामद किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।